पृष्ठ संख्या 28, वस्तु विन्यास। राम की शक्ति पूजा और अंधेरे में की वस्तु विन्यास नितांत भिन्न है। एक अर्थ में विपरीत गामी है। शक्ति का आधार पौराणिक ग्रंथ है, जबकि मुक्तिबोध अपने यथार्थ और निजी अनुभव को काव्य वस्तु के रूप में उपस्थित करते हैं। यानी एक लोक सम्मत गाथा है और दूसरी निजी अवचेतना की कहानी। फलतः प्रथम में अपने ढंग की संगति और व्यवस्था है और द्वितीय में अपने ढंग की विशृंखलता और आपातता संगतिहीनता। पौराणिक आधार के कारण राम की शक्ति पूजा के कथा विन्यास में ऋजुता है, सरल रैखिकता है, जबकि अंधेरे में की बुनावट जटिल पश्यगामी और तिर्यक है। राम की शक्ति पूजा में घटनाओं का क्रम सीधे सीधे आगे बढ़ता है। राम रावण का दिन भर का युद्ध, राम की सेना का अवसादग्रस्त मनः स्थिति में शिविर को लौटना, राम की संशयाकुल हताश मनः स्थिति, सीता की स्मृति में उनमें पुनः उत्साह और उसी क्रम में शक्ति के कार्यकलाप के स्मरण से उनका पुनः हताश होना तथा हनुमान का उद्विग्न होना, हनुमान का शक्ति संहार के लिए अंतरिक्ष में पहुंचना और माता अंजना के प्रबोधन से पुनः वापस होना, विभीषण का राम को उत्साहित करने के प्रयोजन से धिक्कारना, राम का शक्ति के उनके विरुद्ध आचरण, जंबवान के परामर्श से राम का शक्ति की आराधना में लीन होना, हनुमान को शक्ति पूजा के निमित्त 108 कमल ले आने का राम के द्वारा आदेश, राम की आराधना का गहांतर होना, सिद्धि के क्षणों में अंतिम कमल विलुप्त होने से राम का उद्योग, उनका आत्म अधिकार और अंतिम कमल के स्थान पर अपना नेत्र अर्पित करने का निश्चय और निश्चय के क्रियान्वयन के ठीक पहले देवी का प्रकट्य और राम को उनका आशीर्वाद। प्रकट है कि यह सारा घटनाक्रम कथा को सीधे सीधे आगे बढ़ाता है। केवल पृष्ठ संख्या 29 तीन स्थलों पर घटनाक्रम पीछे मुड़ता है। राम को सीता से अपने प्रथम मिलन का स्मरण होना, युद्ध में शक्ति की रावण पक्षीय सक्रियता की राम के द्वारा पुनः प्रस्तुति और राम में इस स्मृति का उभरना कि उनकी माँ उन्हें बचपन में राजीव नयन कहा करती थी। अंतिम दोनों स्थल पूर्व दीप्ति शैली के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि पहला प्रकरण अधिकतम 8-10 घंटे पहले का है और दूसरा आकस्मिक किंतु समाधान परक अप्रत्याशित कौन के रूप में, जिससे कथा विरमित नहीं होती बल्कि वह वर्तमानता का ही एक अंग प्रतीत होती है। पुष्प वाटिका से संबंधित स्मृति ही शक्ति में एकमात्र पूर्व दीप्ति का प्रकरण है और उसका उपयोग कवि ने बड़े ही कौशल से किया है। खंडात्मक रचना होने के कारण वह सहजैव कथा की गति को आगे बढ़ाने वाली है। कुल मिलाकर शक्ति की कथा ऋजु गति से आगे बढ़ने वाली कही जा सकती है। कारण है उसका परंपरा प्रतिष्ठित होना। अंधेरे में के कवि का काव्य नायक को यह आधारभूत सुविधा प्राप्त नहीं है। वह अवचेतन के अनुभवों से आरंभ करता है और दिवा स्वप्नों से गुजरते हुए एक अमूर्त आदर्शवादी संकल्पशीलता के साथ कविता को विराम दे देता है। अवचेतन की भूमिका प्रमुख होने के कारण वही वही या वैसी ही घटनाएं बार बार घटती रहती हैं या उन्हीं के बिंब रह रहकर उभरते रहते हैं, जिसके नाते पूर्वापर संबद्ध गड्ढमड्ढ हो जाता है। काव्य नायक बाकायदा आगे बढ़ते हुए एकाएक अपनी सुपरिचित कंदरा में पुनः पहुंच जाता है। वहां उसे वही चेहरे पुनः दिखाई देते हैं जो उसे यात्रा आरंभ में मिले थे। जुलूस से वह एकाधिक बार दो चार होता है, सीढ़ियों, खूहों, बंद दरवाजों से भी। इसे अनर्गल नहीं कहा जा सकता, किंतु इससे काव्य वस्तु का विन्यास अवश्य विशृंखल होता है। कविता में विशृंखलता का भी अपना सौंदर्य और महत्व होता है, जैसा कि हमें राजकमल चौधरी और सौमित्र मोहन की लंबी कविताओं में देखने को मिलता है, किंतु अंततः उनकी एक संगति होनी चाहिए। यही कारण है कि अंधेरे में को लेकर कई प्रकार के मतभेद हैं और इस कविता के प्रतीकों की सर्वस्वीकार्य व्याख्या अभी तक प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। मुक्तिबोध की रचनात्मक मानसिकता से संबंधित उनके कुछ वक्तव्य उद्धृत करना अप्रासंगिक ना होगा। एक स्वप्न के भीतर एक स्वप्न, विचारधारा के भीतर और एक अन्य सघन विचारधारा प्रचंड, कथ्य के भीतर एक अनुरोधी, विरुद्ध विपरीत नेपथ्य संगीत, मस्तिष्क के भीतर एक मस्तिष्क, उसके भी अंदर एक और कक्ष, कक्ष के भीतर एक गुप्त प्रकोष्ठ और कोठे के सांवले गुहा अंधकार में मजबूत संदूक। पृष्ठ संख्या 30। दृढ़ भारी भरकम और उस संदूक भीतर कोई बंद है। चांद का मुंह टेढ़ा से। पृष्ठ संख्या 18 से। रचना प्रक्रिया वस्तुतः एक खोज और एक ग्रहण का नाम है। अभिव्यक्ति के कार्य के दौरान में कवि नई खोज भी कर लेता है। इस तथ्य को मैं एक उपमा चित्र द्वारा स्पष्ट करना चाहूँगा। दो, वीरान मैदान, अंधेरी रात, खोया हुआ रास्ता, हाथ में एक पीली मध्यम लालटेन। यह लालटेन समूचे पथ को पहले से उद्घाटित करने में असमर्थ है। केवल थोड़ी सी जगह पर ही उसका प्रकाश है। ज्यों ज्यों वह पग बढ़ाता जाएगा, थोड़ा थोड़ा उद्घाटन होता जाएगा। चलने वाला पहले से नहीं जानता कि क्या उद्घाटित होगा। उसे अपनी पीली मध्यम लालटेन ही का सहारा है। इस पथ पर चलने का अर्थ ही पथ का उद्घाटन होना है। और वह धीरे धीरे क्रमशः, वह यह भी नहीं बता सकता कि रास्ता किस ओर घूमेगा या उसे किन घटनाओं या वास्तविकताओं का सामना करना पड़ेगा। इस उपमा को देखकर बहुतेरे लोग यह आरोप लगाएंगे कि यहाँ किसी अवचेतनावादी सिद्धांत का निरूपण हो रहा है। मुक्तिबोध रचनावली 5, पृष्ठ संख्या 215-16। 3, फैंटेसी के कलाकार का व्यक्तित्व प्राथमिक है। फैंटेसी में इच्छित विश्वासों का सन्निवेश हो जाता है और व्यक्तित्व की कुछ मूलभूत कमजोरियों का, कमियों की भी मनोवैज्ञानिक मानसिक पूर्ति हो जाती है। मुक्तिबोध रचनावली 4, पृष्ठ 199। मुक्तिबोध के इन वक्तव्यों से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि वह कविता में कवि के अवचेतन की अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देते हैं, जिसमें यह गुंजाइश भी निकल आती है कि कवि अपनी दुर्बलताओं को भी सीना तान कर घोषित कर सके। यह युक्ति आत्मपरक स्फुट कविताओं के लिए तो ठीक है, किंतु किसी बड़े संदर्भ को लेकर लिखी जाने वाली रचना में कवि के द्वारा बार बार की जाने वाली क्षमा याचना रचना की प्रभावान्विति को तोड़ देती है। अंधेरे में की कुछ आत्म स्वीकृतियाँ दृष्टव्य हैं। एक ब्रैकेट, यह भी तो सही है कि कमजोरियों से ही लगाव है मुझको, ब्रैकेट बंद। दो, अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। तीन, मेरा सिर गर्म है इसलिए भरम है। चार, किंतु असंतोष मुझको है गहरा, शब्द अभिव्यक्ति अभाव का संकेत, काव्य चमत्कार उतना ही रंगीन परंतु ठंडा। पांच, समझ न पाया कि चल रहा स्वप्न या जागृत शुरू है। मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि मुक्तिबोध इन आत्म स्वीकृतियों के कारण छोटे हो जाते हैं, बल्कि यह कि इन दुर्बलताओं के कारण उनकी कविता का वस्तुविन्यास शिथिल एवं पृष्ठ संख्या 31 विश्रृंखल हो जाता है और पाठक काव्य संवेदना से अधिक कवि के प्रति सहानुभूति होने की स्थिति में आ जाता है। मुक्तिबोध की दो चार कविताओं को छोड़कर सभी में यही आत्मदयनीयता प्रभावान्विति को बाधित करती रही है। यों भी अवचेतन को कविता की रचना प्रक्रिया के अंतर्गत प्राथमिकता देने से उसकी प्रकृति स्वतः चलित लेखन ऑटोमेटिक राइटिंग जैसी हो जाती है और तब उसका विश्रृंखल होना लाजमी होता है। मुक्तिबोध स्वयं अवचेतन की भूमिका की प्रमुखता रेखांकित करते हैं। घना व डरावना अवचेतन ही जुलूस में चलता। इस मनोभ्रांति में यथार्थ अनुभव की सशक्त भूमिका है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु उससे एक ओर वस्तु विन्यास विश्रृंखल होता है, दूसरी ओर कवि की संदेश ठीक ठीक संप्रेषित नहीं हो पाता। फिर भी यह कहे बिना बात पूरी नहीं होती कि मुक्तिबोध की कविता में जो आग है, जो तड़प है, वह समूचे अन्याय तंत्र के विरुद्ध कुछ कर गुजरने का संकल्पात्मक आदेश अवश्य उत्पन्न करती है और यही उसकी सार्थकता है, उसके सर्वमान्य होने की वजह है। जब मुक्तिबोध अपने इस संकल्प को अभिव्यक्ति देते हैं, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। तो यह उनका जनावाहन होता है जिसे अनसुना कोई भी नहीं कर सकता। यह प्रेरक शक्ति निराला की वाणी में भी है, जागो फिर एक बार शिवाजी का पत्र आदि। राम की शक्ति पूजा में उसका संदर्भ वैयक्तिक है और विसंगतियों से घिरे हुए मनुष्य के लिए वह भी संजीवनी से कम नहीं है। अंधेरे में कविता सामूहिक स्तर पर उद्बोधित करती है। राम की शक्ति पूजा व्यक्तिपरक आत्मविश्वास देती है। राम की शक्ति पूजा और अंधेरे में के वस्तु विन्यास के प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि निराला ने जहाँ प्रासंगिक घटनाओं के चयन में सावधानी बरती है, वहाँ मुक्तिबोध इस दृष्टि से किंचित बेपरवाह रहे हैं। कथा तंतु को अविच्छिन्न रखते हुए भी निराला अपने काव्य कथ्य की दृष्टि से उन स्थितियों की उपेक्षा कर देते हैं जिनसे कविता में अनावश्यक स्फीति होती है। मुक्तिबोध में यह सजगता नहीं है, कारण स्पष्ट है। एक बंधी बंधाई कथा में एक प्रसंग को अपने ढंग से प्रस्तुत करने के प्रयत्न में उसकी कांट छांट करता है, दूसरा अपने अवचेतन को खुली छूट देने की स्थिति के कारण नियंत्रण की स्थिति में नहीं है। फिर उसके पास पारंपरिक ढांचा भी नहीं है। फलतः राम की शक्ति पूजा में जहाँ रचनात्मक सघनता की पराकाष्ठा है, वहाँ अंधेरे में उसके विपरीत अतिरिक्त फैलाव और अनावश्यक आत्मस्फीति अपने चरम पर है। निराला इस सीमा तक सजग है कि वह भावात्मक स्थितियों से भिन्न व्यवहारिक प्रसंगों को इतनी त्वरित गति से चलता कर देते हैं कि उनकी गौणता स्वतः प्रकट हो जाती है। युद्ध वर्णन निराला का प्रयोजन नहीं है, अतः वह एक अधूरे किंतु पूरे भाषिक आधार पर बिंब के रूप में है। युद्ध समाप्त होने के बाद वानर सेना अपने शिविर में आती है। निराला अत्यंत पृष्ठ संख्या 32 संक्षेप में युद्धकालीन त्वरा की संगति में घटनाक्रम बता देते हैं। बैठे रघुकुलमणि श्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए कर पाद छालनार्थ पटु हनुमान, अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान, वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। इस प्रसंग से पहले पूरी वानर सेना के साथ राम की दैहिक मानसिक स्थिति तथा बाद में पूरी सभा का विवरण पूर्ण का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। ऐसे कई स्थान राम की शक्ति पूजा में हैं, बल्कि कहीं कहीं शीघ्र चलता कर देने की फिक्र में लयभंग भी हो गया है। जंबवान सारी स्थिति समझने के बाद राम को जो परामर्श देते हैं उसमें युद्धगत त्वरा के साथ कवि की प्रसंगगत अभिरुचि भी शामिल है, इसलिए इस प्रकार के लयभंग की कवि चिंता नहीं करता। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक। उनके आगे के वक्तव्य में रणनीति की संक्षिप्त किंतु स्पष्ट रूपरेखा है केवल 3-4 पंक्तियों में। यह चयन दृष्टि मुक्तिबोध में नहीं है, बल्कि वह इस कथा दृष्टि से ही पूर्णतः अपरिचित हैं। अवचेतन को खुली छूट देने के बाद इस प्रकार के वस्तु नियंत्रण की आशा भी कवि से नहीं की जा सकती। मुक्तिबोध की कविता में अवचेतन के बिंब बार बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और कविता की संप्रेषण शक्ति को कमजोर बनाते हैं। काव्य नायक का आतंकित होकर भागना, उसका किसी विभाकार से साक्षात्कार, भागने के क्रम में किसी कंदरा सीढ़ीदार मकान में पहुंच जाना, गोलियां चलने की आवाजें, उसकी हाय हाय, ये दृश्य और प्रकरण अंधेरे में ही नहीं मुक्तिबोध की अन्य लंबी कविताओं में लगभग यथावत घटित और पुनर्घटित होते रहते हैं। लंबी कविताओं में जैसे रचनात्मक सघनता कॉम्पैक्टनेस उपेक्षित होती है, वह अंधेरे में नहीं, जबकि राम की शक्ति पूजा में वह अपनी पराकाष्ठा पर है। वस्तु विन्यास के संदर्भ में दोनों कविताओं के आरंभ और समापन पर भी विचार करना प्रासंगिक होगा। राम की शक्ति पूजा का आरंभ आख्यानक कविताओं के अनुरूप किंतु उनकी प्रस्तुति परक पारंपरिकता से हटकर होता है। पारंपरिक प्रस्तुति से हटने का उल्लेख इसलिए कि निराला से पहले किसी आख्यानक कवि ने काव्य वस्तु की पृष्ठभूमि इस रूप में और इतनी व्यंग्यता के साथ प्रस्तुत नहीं की। वह संघर्ष की भयावहता की याद पूरी रचना में दिलाते रहे। राम की शक्ति पूजा की शक्तिमत्ता का आधार आरंभिक युद्ध चित्र ही है। उनके बिना कविता का ढांचा दुर्बल हो जाता है। मुक्ति बोध ने भी अंधेरे में का आरंभ प्रभावशाली ढंग से किया है, किंतु उनकी कविता के साथ थोड़ा भी आगे बढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा तो इस काव्यनायक के साथ बार बार होता रहता है और वह अंत तक इस आतंकित मनोदशा से उबर नहीं पाता। उबरने की दुर्बल कोशिश में वह जो संदेश और सफाई देता है उस पर विश्वास नहीं जमता। कारण यह कि मुक्तिबोध अपने बारे में ऐसा बहुत कुछ कहते रहे हैं जिनका वह प्रत्यक्षता या प्रकांतर से खंडन भी करते रहे हैं। पृष्ठ संख्या 33। समापन में निराला पारंपरिक रहे हैं, लगभग पौराणिक। शक्ति का अंत वह अपनी पौराणिक सज्जा के साथ प्रकट होकर राम को विजय का आशीर्वाद देना पूरी रचना के तेवर के संदर्भ में अनुपयुक्त और किसी सीमा तक लचर लगता है। इसे बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता था। निराला ने ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर उन्हीं के पास रहा होगा। है यह एक थोथा समापन जो कुल मिलाकर रचना की समग्र प्रभावत्ता को हल्का कर देता है। इतना अवश्य कि शक्ति सीधे सीधे राम के पक्ष में रावण के विरुद्ध शस्त्र अस्त्र सन्नद्ध होकर युद्ध में उतरने का आश्वासन नहीं देती। वह अपनी महिमा राम के मुखमंडल के माध्यम से उसके व्यक्तित्व में निक्षिप्त कर देती है। यह एक प्रकार से शक्तिपात की प्रक्रिया है। शायद निराला के मन में यह रहा हो। अंधेरे में का समापन अभिव्यक्ति की खोज के अनिश्चयात्मक पुराख्यान से होता है। आतंकित कवि या काव्यनायक कोई समाधान नहीं पा सका, बस वह भाग रहा है और इस यत्र तत्र सर्वत्र भागने के क्रम में उसे लगता है कि उसे अभिव्यक्ति का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अभिव्यक्ति का व्यंग्यार्थ है मुखर विरोध। भाषा की समस्या तो मुक्तिबोध के संदर्भ में मोटी सी बात है, क्योंकि वह अहिंदी भाषी थे और वह ऊबड़ खाबड़ हिंदी ही लिख सकते थे। अतः जब वह अभिव्यक्ति के संकट और उसके सारे खतरे उठाने की बात कहते हैं तो उसका कोई विधेयात्मक प्रभाव नहीं निष्पन्न होता। जो वस्तु एवं स्थितियों का सामना न करके स्वयं भाग रहा है, उसका उपदेश दूसरों के लिए कितना सार्थक और प्रेरणादायी होगा, यह बताने की आवश्यकता नहीं। अपने समर्थकों को लड़ने की सीख देकर जो सेनापति स्वयं युद्धस्थल से पलायन कर जाएगा, वह प्रासंगिक कभी नहीं होगा। यह अवश्य कि मुक्तिबोध ने आम मध्यम वर्ग की त्रासदी को भोगा है और उसे अपनी कविताओं में अभिव्यक्ति भी दी है, किंतु इससे अधिक वह कुछ नहीं कर सके। अंधेरे में का समापन उनकी इसी अर्थहीन सक्रियता का प्रवाचक है। यह अवश्य कि जहाँ निराला ने व्यक्ति मन की त्रासदी पर अपने को केंद्रित किया, वहाँ मुक्तिबोध ने सामूहिक जनजीवन के संकट को काव्य विषय बनाया है। किंतु यह भी ध्यान में रखना ही होगा कि निराला का व्यक्ति एक सांस्कृतिक महामानव है जिसके साथ समूचे भारतीय समाज की सहानुभूति है और जो संकट की स्थिति आने पर भागता नहीं, शक्ति भर सामना करता है। मुक्तिबोध के काव्यनायक में इस संकल्पनात्मक दृढ़ता का अभाव है। उसका व्यक्तित्व उस पत्रकार का सा है जो खतरों की परिघ में दाखिल तो हो जाता है, किंतु उसके बाद हाय हाय करता हुआ पछताते हुए छिपने की जगहों की तलाश में इधर उधर भागने लगता है। अंधेरे में का समापन उदांत है, किंतु निर्वीर्य राम की शक्ति पूजा का समापन पौराणिक ढंग का है और उसे अप्रासंगिक भी कहा जा सकता है, किंतु वह सांस्कृतिक महामानव के माध्यम से व्यक्ति मन को आत्मविश्वास का संबल अवश्य प्रदान करता है।